نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة الكهف آیت نمبر 60. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضر کا قصہ شروع ہوتا ہے جو 15 پارے کے اینڈ سے لے کر 16 پارے کے شروع میں جائے گا. ہم تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس واقعے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو دنیا ہے اس میں ہر وقت مختلف قسم کے واقعات پیش ہوتے ہیں. میں اور آپ اگر اپنی زندگی کے اوپر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو بہت سے ایسے حالات سے ہم گزرے ہوں گے کہ جن کی حکمت ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آئی. بچپن میں کبھی اسکول جانے کی حکمت سمجھ آئی تھی؟ کبھی صبح اٹھ کے 7 بجے روتے منہ کے ساتھ بچے کو آنکھیں بند کے ساتھ ناشتہ کروانے کی حکمت سمجھ آئی تھی؟ لیکن یہ حکمتیں کب سمجھ آتی ہیں؟ جب ہم اس کا پھل پاتے ہیں. اسی طرح انسانوں کی زندگی میں کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے انیوژل واقعات ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر ہم اس کی حکمت سمجھ نہیں پاتے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ زیادتی ہو رہی ہے یا اس کا کچھ ہمارے ساتھ معاملہ خراب ہوگا, لیکن اس کی حکمت بعد میں بہت ہی اچھے طریقے سے جب سمجھ آتی ہے تو اللہ کا شکر آتا ہے. اسی لیے اس واقعے میں جو ہم ابھی حضرت موسیٰ اور حضر کا پڑھنے والے ہیں اس میں چند واقعات ہیں کہ جن کے اندر ہمیں ظاہر سمجھ نہیں آتا. ہم واقعہ شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد بات کریں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو نبی بننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے طالب علم بنایا. یہ نوٹ کیجیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طالب علمی کے مینر سکھائے, علم کی دولت کی قدر کرنا سکھایا, پھر رسالت کے کام پہ چنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک انسان خود کسی خاص سیٹ اپ سے گزرتا نہیں ہے وہ دوسروں کو وہ سنا نہیں سکتا. اور موسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے اس وقت ان کو نبوت مل گئی تھی تو ابھی تورات نہیں ملی تھی, یہ بھی ممکن ہے, لیکن ان کے اندر اتنی عاجزی تھی کہ کسی نے پوچھا کہ موسیٰ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو موسیٰ نے اپنا نام لے دیا اس گمان کے مطابق کہ واقعی کوئی نہیں تھا. اور لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں جگہ جائیے, وہاں ایک اور شخص ہے اور وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے. تو بجائے اس کے غصے میں آتے اور ناک منہ چڑھاتے, کیا ضرورت ہے, مجھے سب آتا ہے, میں تو پڑھاتا بھی ہوں, مجھے تو اتنے لوگ جانتے ہیں, دس اینڈ دیٹ, میرے تو گھر کے آگے گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں, اس کی بجائے موسیٰ نے کہا اچھا میرے سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو نو پرابلم, میں چلتا ہوں. جیسے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے, تو یاد رکھیے وہ علم والا ہی اصل علم والا ہے جس کے اندر مزید علم حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے. اور جب آپ دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ علم بھی آپ کا ہی ہو جاتا ہے, اور آپ تعصب کے مارے صرف اس رونت میں نہیں سنتے کہ ہاں ہم تو بہت بڑے اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ چونکہ ہم پڑھاتے ہیں تو ہم پڑھنے چلے گئے تو لوگ سوچیں گے ہمیں کچھ نہیں آتا. سمجھ لیجیے یہ کم علمی کی باتیں. علم جتنا بڑھے گا آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی سیکھنے میں خوشی ہوگی, اور کم علم والا اکڑے ہوئے کپڑے کی طرح تھوڑا سا علم کچا پکا دوسروں کو دینا تو پسند کرتا ہے, لیکن ساؤنڈ نالج لینا اس کو اپنی انا کے خلاف لگتا ہے. تب موسیٰ علیہ السلام کا جب خضر سے معاملہ پڑا تو وہ یہ ساری چیزیں جو تھی اس میں آئیں گی. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 60 سے تھوڑا سا ترجمہ پڑھ کے پھر بات کریں گے, بلکہ میں چاہوں گی کہ زیادہ ترجمہ اکٹھا پڑھ لیں تاکہ پھر اس میں سے ہم ایک سٹریچ میں اپنے لیے عمل کی باتیں لیتے جائیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ عَمْدِيَ حُكُبًا. ذرا ان کو وہ قصہ تو سنائیے جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں, ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. بس جب وہ اس کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے, وہ اس طرح نکل کر دریا میں چلی گئی جیسے کہ سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ, آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا, جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. پھر وہ اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے اتنے حصے میں بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ یہ واقعہ موسیٰ کی رسالت سے پہلے کا ذکر ہے. اس میں نبوت تو ملی ہو سکتی ہے لیکن رسالت کب ملی تھی؟ جب تورات ملی. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ایک بگڑی ہوئی قوم سے پڑھنے والا تھا جن کو سوال بہت کرنے کی عادت تھی, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک ٹریننگ سیشن رکھا جس میں کوسچن مینجمنٹ سکھائی. क्योंकि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को भी उनके सवालों के कोई भरपूर जवाब नहीं मिल रहे और उनके इस टीचर जो है वो बहुत ही डिस्करेजिंग बिहेव करते हुए दिखते हैं, लेकिन असल में हर सवाल का जवाब दिया नहीं जाना चाहिए, वरना बाज़ दफ़ा फायदे से ज्यादा नुकसान होता है, स्टूडेंट का जहन इधर से उधर पलटने लगता है, तो लिहाजा दिखाए। दूसरी बात है कि चूंकि मूसा नबी बनने वाले थे और अल्लाह ताला अंबिया कराम को अंदर की हिकमतें भी सिखा देते हैं बाज़ चीज़ों की, ताकि लोगों को वो जो बात कहे शरह सदर से दे। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम घड़ी को देखते हैं तो हम ऊपर से देखते हैं उसकी सुई किधर है, 6 पे, 7 पे, 8 पे, और वो किस रंग की है, उसका स्टेप किस रंग का, दैट्स इट। लेकिन जब आप उस घड़ी को किसी मैकेनिक को देंगे तो वो इसको खोल के अंदर के पुर्जे चेक करेगा, तो जब अंदर पता चल जाता है तो बड़ा बीमारियां और खराबियां नजर आती हैं। इसी तरह अंबिया कराम को लोगों के अंदर की बुराइयां पता होनी चाहिए। और आज भी याद रखिए, वो दाई दीन, वो दीन की बात करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता जो लोग क्या सोच रहे हैं इसको जहन में रख के बात ना करें। आप 10 बातें उनको कह के आ जाएं और उस वक्त आप उनको जहनी तौर पे ट्रैप ना करें, उनको अपने हाथ में ना लें, तो आपकी बात बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम का ये सफर तलब इल्म का सफर था, और ये सारे वाक्या जो इसमें आएंगे वो ईमान वालों को पेश हुए कि जिसमें वक्ती नुकसान था लेकिन आखरत के नुकसान से बच गए। उम्मते मुस्लिमा के नाते से हमें इसमें क्या बात समझ आएगी कि आज अगर मुसलमानों को इस दुनिया में होने वाले कुछ बातों की हिकमत समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि इससे तुम अपने लिए इबरत हासिल करो। नोट कर लीजिए कि क्या हिकमतें होती हैं ऐसे मौक़ों पर। दुनिया में जब भी कोई वाकया पेश होता है तो अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं इसको कबूल कर लो, ठीक है। अब दो किस्म के वाकयात, एक है खुशगवार, जब खुशगवार वाकयात आते हैं हमारी जिंदगी में, कोई फायदा होता है तो हम अपने अकीदे के मुताबिक फौरन सोचते हैं कि ये मेरी नेकियों का सिला है, हाँ देखा मैंने रात तहज्जुद बड़ी अच्छी पढ़ी थी ना तो आज सुबह ये हो गया, ये तो कोई मसला नहीं, इस पर कोई नहीं सोचता वाह व्हाट क्यों हुआ मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन जो दूसरी किस्म के वाकयात है जिनको नागवार वाकयात कहते हैं, इसको सुनने के बाद फिर दिल में कई किस्म के सवालात उभरते हैं। मसलन मोमिन कहता है क्यों हुआ, क्या मेरे गुनाह की सजा है, अच्छा मैं आजमाइश में हूँ, क्या हो सकता है। फिर कभी कभी शैतान को मौका मिलता है, देखो तुम तो इतने नेक हो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और भला फिर देखो ना अगर अल्लाह को तुम्हारी नमाजों की परवाह नहीं तो फिर और नमाजों से तुम्हें क्या होगा। तो लिहाजा ऐसे नागवार वाकयात की हकीकत समझाने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये दिखाया। तो इन सारे वाकयात में हमें कुरान की वायत याद रहेगी, असान तक रहु शैयन बहुवा खैरुल्लकुम, हो सकता है तुम्हें कोई चीज नापसंदीदा लगे लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। फिर दूसरी बात इन वाक्या से जो सिखाई जाएगी वो क्या है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो खुद ब खुद नहीं हो रहा, यानी आप ये नहीं कहे कि ये दुनिया आटों पे है बाय चांस हो रहा है, बल्कि इनके पीछे अल्लाह की कुदरत दिखाई जा रही है। इन अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर का सबक हमें इन वाक्यात में मिलेगा। और फिर तीसरी बात ये समझ आती है कि जब भी कोई ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में आए जो आपको अच्छा ना लगे तो ऐसे वक्त में उन चीजों को बुनियाद बनाकर अपनी मजीद इसलाह की कोशिश की जाए। फिर हजरत मूसा तनहा नहीं गए, ये जो जवान है ये इनका स्टूडेंट है, इससे क्या पता चलता है कि इल्म के सफर में और दीन के कामों में अच्छे साथी कौन होते हैं, जो अपने साथियों को साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि अपनी जिंदगी में अपने शागिर्दों की ट्रेनिंग कर देना और अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर देना अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना होता है, अपने सदका जारिया को बढ़ाना होता है। वो माँ बाप जो आखिरी दिन तक बच्चों को स्पून फीडिंग करते रहते हैं, ना सोचने की तौफीक देते हैं ना कुछ, याद रखिए उनकी मौत का धचका बड़ा सख्त होता है उन बच्चों के लिए, फिर उनके आंसू ही कोई और पहुंचेगा, उनको तो अभी इस दुख को भी नहीं सहना आता। इसी तरह वो उस्ताद या लीडर्स या बड़े जिसको जिस लेवल में ले लीजिए, हमेशा अपनी बात मनवाते हैं और कह दिया तो बस करना पड़ेगा वाली बात होती है। पहली बात है कि उनको अपने साथियों के टैलेंट से फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता। हमेशा याद रखे हर बंदे में आपसे भी ज्यादा टैलेंट है। अब ये अच्छे उस्ताद का काम होता है कि उसको उभारे, सोचो आप बताएं, उसको 100 दफा भी पता होगा ना कि यस या नो, क्या क्या ठीक है क्या गलत है, फिर भी वो हर एक से पूछे कि आपका क्या ख्याल है, आप होती तो क्या करती, आप क्या मशवरा देती। इससे क्या फायदा होता है कि उनकी भी ट्रेनिंग होती है, वो कुछ और सोच रहे हैं, बाद में फैसला कुछ और हुआ तो उनको खुद बखुद समझ आ जाता है कि हम लोगों ने बात जो की थी वो ठीक नहीं थी, नेक्स्ट टाइम जब भी कभी मौका आएगा वो अपने आप पे रहेंगे। फिर आप देखिए कि बाहर मूसा रास्ता भूल गए हैं, लेकिन मूसा की डिटर्मिनेशन आपको इस वाक्य में दिखेगी कि वो रास्ता भूलने को जान छुड़ाना नहीं समझ रहे कि अच्छा फिर आज नहीं जाते, घर में ही बैठ के सुन लेते हैं या घर ही चले जाते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। फिर जो शागिर्द थे जो खादिम साथ थे उनसे गलती हुई, एक इंस्ट्रक्शन दी थी वो उसको भूल गए, तो मूसा ने उससे कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। और हकीकत है कि साथ रहने वाले अगर गलती ना करे तो आपके साथ कभी नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग या जो अपने आप को हरफन मौला समझते हैं वो फिर किसी के साथ कैसे रहें। आज बहुत सारे लोग खुद काम करने में बहुत अच्छे फील करते हैं लेकिन दूसरों के साथ मिलके नहीं चलते क्योंकि अंदर अना भरी होती है, ईगो होती है। तो लिहाजा मूसा अलैहि सलाम ने उनसे कहा कि हम वापस अपने कदमों पे चलेंगे। फिर इसमें एक और बहुत ही खूबसूरत बात देखी कि भूख और थकन पे काबू पाना इल्म की शान है। और यहाँ ये भी पता चला कि शैतान भुलवा देता है, इल्म के रास्तों में ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करता है ताकि ये हो। तो शुरू से सोच लीजिए कि ये सब कुछ तो होगा, इसलिए अब आगे देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंच के जहां जाना था। इमेजिन कीजिए कि उनकी गाड़ी आपके स्कूल के आगे खड़ी हो गई, अब जो लेने आए थे वो लेना चाहते हैं, दिल पहले से तैयार था तभी हुआ। अब मूसा का मुकालमा खिजर के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, हाईलाइट कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपना, क्योंकि दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, जब तक आप उसको किसी सिस्टम के अंदर नहीं लाएंगे, जब उसको आप किसी भी चीज के साथ जोड़ेंगे नहीं, लोग उसकी कमिटमेंट महसूस नहीं करेंगे। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने परमिशन ली, और आज के दौर में परमिशन लेना ऐसे ही ऑफिशियली दूसरी चीजों को साथ लेना होता है। ये भी एक अच्छा मैनर है उम्मत मुस्लिमा का, लेकिन अफसोस की बात है ये देखा गया आज हमें बींग अ नेशन हमारा रवैया क्या हो गया, क्या हम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस में फंसना अपने ऊपर बोझ डालना समझते हैं। और बस जब अपने मुकाम के खिलाफ समझ लो, अब हमें क्या जरूरत है साइन इन की, और हम अब साइन आउट करें, अब हम पहले से बताएं कौन आ रहा है, कब आ रहे हैं, हम रीजन बताएं, तो वो क्या हुआ कि हम आजाद रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सीखेंगे लेकिन हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, हम आते रहेंगे। तो आज तक तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसे डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं किए जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना लिया। आप बताइए कि जब तक हम किसी को ये उम्मीद नहीं दिलाते कि हम यकीनी तौर पे ये काम करेंगे, वो काम कर लेगा तो किस उम्मीद पे करेगा? आपको आना है, आपको नहीं आना, अगले को आखिर वक्त तक नहीं पता, तो क्या होगा? इसीलिए आप देखिए कि हमारे अमूमन प्रोग्राम में बदनज़मी हो जाती है, एक्सपेक्टेशन से खिलाफ रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि लोगों ने पहले कुछ नहीं कहा होता है, एंड वक्त पे फिर वो अपनी हाजिरी देकर वो सोचते हैं कि हमें किसी को बताने की जरूरत ही क्या, वो तो हमें पता ही है हम आएंगे, हम है इतने अहम। इस तरह की जो बेकायदगी है ना, इससे आज उम्मत मुस्लिमा का मोरल डाउन हुआ है। जरा आज किसी के घर जाने से पहले आप फोन कर ले पाकिस्तान में जाने के बाद कि अच्छा मैं आई हुई थी मैं आ जाऊं, तो वो कहते क्या हो गया बड़े गोरे बन गए हो, कोई अपने घरों में आग पूछ के आता, बड़ी अमेरिकन हो गई है। भाई अमेरिकन होने की क्या बात है, अल्लाह खुद कहता है आगे पढ़ेंगे सूरत नूर में, इजाजत लो। तो बस वो लोग कहते हैं अच्छा आने से पहले फोन इसलिए किए कि चाय के साथ जरा पकौड़े समोसे बना लो, उल्टी मत मारी हुई है, हर बात में उल्टी, हर बात में उल्टे। और जाएं और वो अच्छे मुंह ना बात करें तो कहेंगे खुशी नहीं, पता ही नहीं, वो बेचारे लड़ रहे थे घर में बैठे हुए, कोई झगड़ा चल रहा था, कोई दुखी था, तो आप पहुंच गए। तो ये चीजें दुरुस्त नहीं होती, हमेशा अपनी जात से दूसरों को खुशी दें। इसीलिए आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की ये रिक्वेस्ट क्या थी कि आप मुझे रख लें ताकि आप मुझसे भी इस दानिश की तालीम दें जो आपको सिखाई गई। हाईलाइट कीजिए, एक मोटिव लेकर हमेशा इंसान आए कि मुझे इल्म सीखना है। और जहां दानिश कहा गया, हिकमत, इल्म घर बैठ के मिल जाता है, हिकमत उस्ताद के सामने बैठ के मिलती है। क्यों? उसमें सब्र होता है, उसमें मैनर्स होते हैं, उसमें एटिकेट्स होते हैं। गालिबन इमाम मालिक या किसी और की बात है कि मैंने अपने उस्ताद से एक बार इल्म सीखा, और शायद सैकड़ों बार कह लीजिए, मुझे सही फिगर याद नहीं कि 70 दफा पढ़ा या कितनी दफा पढ़ा, तो उसमें एक दफा इल्म सीखा, बाकी सब दफा मैंने उनसे हिकमत सीखी। तो याद रखिए जब आप बार बार एक ही बंदे से सीखते हैं ना, तो आपको और बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि आपको तकाबुल भी करना आता है कि पहले ये बात नहीं बताई थी, अब बताइए ये हालात में ये हुई, और फिर एक किस्म का बॉन्ड भी बन जाता है आपस में। तो बाज़ औक़ात एक ही चीज को बार बार सुनना और बार बार उसी से सीखना भी फायदा देता है, क्योंकि इंसान को उससे बहुत सारे मामले जो है वो तय करने आ जाते हैं। तो खैर उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा आप मेरे से सब्र नहीं कर सकते। नोट कीजिए, पहली पाबंदी जो मूसा पे इल्म के रास्ते में लग रही है वो क्या है कि देखिए आपको सब्र करना पड़ेगा, सब्र के बगैर इल्म आता ही नहीं है। अक्खड़ कौम से वास्ता पड़े और बंदे के अंदर सब्र ना हो कभी भी नहीं बात होगा। तो लिहाजा कहा कि सबसे पहला जिसको कि प्री रिक्विजिट क्या है इस कोर्स की, सब्र। यस, जल्दी उठना पड़ेगा, नींद पे काबू पाना पड़ेगा, सबक याद करना पड़ेगा। जब तक उम्मत मुस्लिमा भी सब्र नहीं करेगी दुनिया में बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात है कि सब्र यहाँ सवालों का सब्र भी था, ये ना हो कि जो दिल में आपके बात आए फौरन पूछ लें। आज के दौर का ये भी एक बहुत बुरा तरीका दिखा कि उस्ताद बात करते हैं, शागिर्द साथ ही पूछना शुरू हो जाते हैं, कोई कमेंट देता है, कोई बीच में लुक में देते हैं, पता चला 15 मिनट गुजर गए, बात जहां से शुरू हुई थी वो वहां पहुंच गई, और बात शुरू हुई थी मूसा की कौम से और वो गाय भैंसों पे चली गई। ये दुरुस्त तरीका नहीं होता। देखिए, थोड़ी देर सवाल को अपने अंदर रखना होता है। अब जिसका जब दिल चाहे तब पूछ लिया, ये बेसब्री है। आप देखिए कि सिंगल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी है इस वक्त हमारे सामने, लेकिन मैनर्स और एटिकेट्स वो सिखाए जा रहे हैं जो आज भी अप्रूव हो चुके, कि जब तक स्टूडेंट्स को टेम ना किया जाए, हर वक्त हर बात करने की पोजीशन में हो, तो वो कभी भी इल्म हासिल नहीं करेगा। तरीका क्या होता है, दिल में सवाल आया उसको लिख लीजिए, बाद में जब मौका मिले उसको बता दिया जाए। तो ओबीडियंस ही असल में वो चीज़ है जिसको आप कहते हैं। फिर हर जगह इंटरेक्टिव सेशंस नहीं चल सकते, हर जगह आपसे कोई डिस्कशन स्टाइल पे बात नहीं होगी, एक आप बोले एक आप बोले, कुछ आप सुने हम सुनाए। लेकिन जब दिल में बड़ाई का एहसास होता है, कहते हैं हमसे तो कुछ सुना ही नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि देखिए, आप मेरे साथ सब्र नहीं करेंगे, और जिस चीज़ की आपको खबर ना हो, आखिर आप इस पे सब्र कर भी कैसे सकते हैं। खुद ही सहूलत, इससे पता चलता है अच्छा उस्ताद अपने शागिर्दों को सहूलत देता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। कमिटमेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं कि यस आई विल डू ऑल माई बेस्ट, मैं सारी कमिटमेंट को अपने हिसाब से पूरा करूंगा और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की दो खूबियां कि आई विल फॉलो द रूल्स और आई विल बी ओबीडियंट। और जब तक ये काम नहीं होगा, दुनिया का कोई काम भी होने वाला नहीं होगा। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम का एप्लीकेशन फॉर्म कबूल हो गया। काल फैनित तबातनी, उन्होंने कहा अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात ना पूछिएगा जब तक कि मैं खुद इसका जिक्र ना कर दूं। क्या पता चला कि जब ऐसे मामला हो गए, मूसा से उनकी बातचीत हो गई, का फाइन है फन तलाका, फिर वो दोनों रवाना हुए, यहाँ तक कि वे कश्ती में सवार हो गए। अब यहां से ऐसे लगता है कि वो जो स्टूडेंट था वो चला गया। इसके आगे हमेशा तस्नियां के सीगे हैं, मल्टीवल नहीं है। यहां से क्या पता चलता है कि जो लोग साथ खिदमत के लिए होते हैं, अगर उनको एक मुकाम के बाद रोक दिया जाए कि अब आप बैठिए, अब आगे पर्सनल मीटिंग है, अब आपकी जरूरत नहीं है, आप आराम कर लीजिए, तो माइंड नहीं करना चाहिए। हर वक्त हर जगह हर हाल में अगर कोई इंसान साथ रहता है, तो बाज दफा फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा होने लग जाता है। तब मूसा अलैहिस्सलाम का वो सफर पूरा हुआ, उनको एक और साथ मिल गया, दोनों चले, यहाँ तक कि वे कश्ती में सवार हो गए। इस शख्स ने कश्ती में शिगाफ डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने इसमें शिगाफ डाल दिया ताकि सब कश्ती वालों को डुबो दे। देखिए, शुरू में ही डिसोबीडियंस ही शुरू हो गई और भूल गए थे असल में, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल कर लिया इससे पहले कि उनके उस्ताद उनको उसकी हकीकत बताते कि ऐसा क्यों किया मैंने। खैर, ये तो आपने एक बड़ी सख्त हरकत कर डाली। उन्होंने कहा, मैंने आपसे कहा ना था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा, भूल चूक पर मुझको ना पकड़िए, मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम ना लें। बस जब स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं ना, तो ठीक से पढ़ते कोई नहीं, बस साइन कर लेते हैं, कहाँ करने कहाँ करने। फिर बाद में क्या हुआ, जब कोई रूल ब्रेक हुआ, आप कहते हैं जी आप साइन कर चुके हैं, वो कहते हैं कहाँ, हमें तो बताया ही नहीं गया। और ये इतनी दफा हुआ कि हम पूरे ओरिएंटेशन डे पे, बल्कि फॉर्म फिल करने से पहले वो सारे फिगर्स दिखाते हैं कि देखिए ये रूल पढ़ लीजिए, सबको पता होता है, लेकिन जब वो रूल टूटता है कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमें कहा ही नहीं, कभी आज तक कहा ही नहीं। कभी लेट एडमिशन होता है, कभी उस प्रोग्राम को मिस किया होता है। तो याद रखिए कि ऐसे वक्तों को फिर इंसान किस तरह टैकल करे कि हर चीज़ को बेहतर तरीके पे करे। मेरे और आपके लिए अमल की इसमें यही बात है कि जब कभी मुझे मौका मिले किसी सिस्टम में दाखिल होने का, तो मैं खुद सारी चीज़ों को समझ लूँ, पढ़ लूँ, फिर अल्लाह से दुआ करूँ कि मैं करूं। मैं सोचती हूँ कि जितना वक्त मैनेजमेंट पे लगता है, उतना तो एकेडमिक पे भी लगे, तो न जाने इंसान क्या कुछ कर दे। लेकिन ये सब क्यों किया जाता है, ताकि किसी की हक तलफी ना हो, काम को बेहतरीन और आसान दर्जे पे किया जाए। तो एज अ स्टूडेंट या एज अ, यानी जिसको आप लिसनर कह लें, गेस्ट कह लें, हमेशा मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। वो किधर से गुस्से, जूते इधर रखे, बैग इधर रखे, फोन बंद कर दें, बच्चों को ना ले जाएं, तो इसको दिल की खुशी से मानना चाहिए। जहाज में बैठते हुए तो हम कभी नहीं उसमें कहते कि नहीं जी हम तो फोन साथ सुनते ही रहेंगे, लेकिन दीन की चीज़ों पर खास तौर पर हमारा रवैया थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो किस्सा मुझसे कि हजरत मूसा पहला पहला चांस मिस कर गए। उस्ताद ने क्या कहा, قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا। अच्छा, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर लेंगे। قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, कहा अच्छा, अगर आप कुछ कर दिया तो फिर आप मेरे साथ ऐसा मामला ना कीजिए। अब क्या हुआ आगे, मूसा ने कहा आपने एक बेजान की जान ले ली, हालांकि इसने किसी का खून ना किया था, ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया।